नमस्कार भारत, 11 फरवरी दिन गुरुवार, मैं हूं संदीप सोनी। तुर्की ने सीरियाई संकट के लिए संयुक्त राष्ट्र और अमेरिका पर आडंबर का आरोप लगाया।
तभी मültecileri hepimiz kabul edeceğiz. Ama bu saldırıların bir diğer amacı da Suriye'de bir etnik temizlik yapmak. Rejim yanlısı olmayan bütün Suriye.
दिल्ली के सेना अस्पताल में भर्ती लांस नायक हनुमान थप्पा अभी भी खतरे में, सलामती के लिए कई जगहों पर प्रार्थना सभाएं। लखनऊ में पुलिस और वकीलों के बीच हिंसक टकराव। झारखंड में कम उम्र में शादी के खिलाफ एक लड़की का संघर्ष।
गांव में बहुत कम पढ़े लिखे हैं और वो लोग भी बहुत कम उम्र में शादी किए हैं, वो लोग भी बाल विवाह किए हैं, इसलिए वो लोग वही चाहते थे कि छोटी उम्र में भी शादी कर दे, जब मेरे सिर का बोझा उतर जाए।
होंगी और भी खबरें, लेकिन पहले विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार, दिलनवाज पाशा से। तुर्की ने उत्तरी सीरिया में जारी युद्ध संकट पर संयुक्त राष्ट्र और अमेरिका की प्रतिक्रिया की तीखी आलोचना की है। प्रधानमंत्री अहमद दावूतोग्लू ने संयुक्त राष्ट्र पर सीरिया प्रवासी संकट के मामले में पाखंडी नीति अपनाने के आरोप लगाए हैं। उन्होंने यह भी कहा कि रूसी हवाई हमले की मदद से एलेप्पो में सीरियाई सेना का ताज़ा हमला एक समूची नस्ल का खात्मा करने के बराबर है। मानवीय समूहों ने चेतावनी दी है कि सीरिया के उत्तरी शहर एलेप्पो के इर्द गिर्द जारी लड़ाई भीषण तबाही में बदलती जा रही है। अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस का कहना है कि शहर में पानी आपूर्ति पिछले 2 सप्ताह से ठप है। मानवीय मदद पहुंचाने वाले कुछ रास्ते जाने लायक नहीं बचे हैं, जबकि बिजली और ईंधन की भारी कमी है। स्वास्थ्य सेवाएं देने वाले समूह मेडिसास ऑन फ्रंटियर का कहना है कि उसके 3 अस्पतालों पर हमले हुए हैं। रूस के समर्थन से हो रहे सीरियाई सेना के ताज़ा हमलों के बाद से करीब 50,000 लोग एलेप्पो छोड़कर तुर्की सीमा के पास चले गए हैं। अमरीकी न्याय विभाग फर्ग्यूसन शहर की पुलिस व्यवस्था में सुधार लाने के लिए शहर के खिलाफ संघीय मुकदमा शुरू करेगा। शहर के अधिकारियों और संघीय प्राधिकरण के बीच हुए समझौते को स्थानीय परिषद के नकारने के बाद ये कदम उठाया जा रहा है, अमरीका की अटॉर्नी जनरल लॉरेटा लिंच ने बताया।
Today, the Department of Justice is filing a lawsuit in federal district court against the city of Ferguson, Missouri.
आज न्याय विभाग संघीय डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में मिजूरी के फर्ग्यूसन शहर के खिलाफ मुकदमा दायर कर रहा है, जिसमें संविधान के पहले, चौथे और 14वें संशोधनों और संघीय नागरिक अधिकारों का उल्लंघन करके कानून व्यवस्था चलाने के आरोप लगाए गए हैं। हम इस मामले पर पूरा जोर लगा देंगे और इसे जीतना चाहेंगे। उत्तरी नाइजीरिया के अधिकारियों के मुताबिक बोर्नो प्रांत में प्रवासियों के लिए बनाए गए एक कैंप पर हुए आत्मघाती हमले में कम से कम 52 लोग मारे गए हैं। 2 महिलाओं ने हमले को अंजाम दिया, जबकि 3री महिला को जिंदा पकड़ लिया गया। रिपोर्टों के मुताबिक गिरफ्तार की गई महिला ने इसलिए धमाका करने से इनकार कर दिया क्योंकि उसके परिजन भी कैंप में मौजूद थे। चरमपंथी इस्लामी समूह बोको हराम के हमलों के कारण बीते 6 साल में करीब 20 लाख लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ा है। बीबीसी संवाददाता के मुताबिक ताज़ा हमला दर्शाता है कि घर छोड़ने के लिए मजबूर लोग सुरक्षा गार्डों की निगरानी वाले कैंपों में भी सुरक्षित नहीं हैं। ब्राज़ील के रोमन कैथोलिक चर्च ने जीका वायरस प्रभावित महिलाओं के गर्भपात की संयुक्त राष्ट्र समर्थित मांग को ठुकरा दिया है। माना जा रहा है कि मच्छरों से होने वाले इस वायरस से भ्रूण के दिमाग और सिर पर असर होता है और पैदा होने वाले बच्चे कम विकसित होते हैं। अमरीकी सीनेट ने उत्तर कोरिया पर कड़े प्रतिबंधों के मसौदे को मंजूरी दे दी है। बीबीसी समाचार।
बीबीसी हिंदी से दिन की पहली सभा नमस्कार भारत सुन रहे हैं आप संदीप सोनी के साथ, रेडियो के साथ साथ bbchindi.com पर और अपने मोबाइल फोन पर भी लाइव। कार्यक्रम की शुरुआत एक अंतर्राष्ट्रीय खबर से। तुर्की ने सीरिया संकट के लिए संयुक्त राष्ट्र और अमेरिका को आड़े हाथों लिया है। तुर्की ने आरोप लगाया है कि ज्यादा शरणार्थियों को पनाह देने की संयुक्त राष्ट्र की मांग एक आडंबर है। तुर्की ने सीरियाई कुर्द लड़ाकों को समर्थन देने के लिए अमेरिका की भर्त्सना भी की है। बीबीसी संवाददाताओं के भेजे ब्यौरे का सार सुनिए दिलनवाज पाशा से।
रूसी हवाई हमलों की मदद से सीरियाई सेनाएं विद्रोहियों का गढ़ माने जाने वाले सीरिया के दूसरे सबसे बड़े शहर अलेप्पो पर कब्जे की ओर बढ़ रही हैं। अलेप्पो के लोग अपना घर छोड़कर तुर्की की सीमा की ओर भागने को मजबूर हैं। इसी बीच तुर्की ने उत्तरी सीरिया में गहरा रहे संकट पर संयुक्त राष्ट्र और अमरीका की प्रतिक्रिया की तीखी आलोचना की है। संयुक्त राष्ट्र तुर्की से सीरियाई प्रवासियों के लिए अपनी सीमाएं खोलने के लिए कह रहा है। तुर्क प्रधानमंत्री अहमद दावुतोग्लू ने इसे संयुक्त राष्ट्र का पाखंड कहा है। उन्होंने कहा,
Suriye sınırları içindeki kamplarda barınmasını teminen yeni kamp kuruyoruz.
कुछ लोग सीरियाई संकट को खत्म करने या प्रवासी संकट की वजह बन रहे रूसी हवाई हमलों को रोकने के लिए उंगली तक नहीं हिला रहे हैं, क्योंकि कोई भी नहीं है जिसमें रूस से ये सब रोकने के लिए कहने की हिम्मत हो। वही लोग तुर्की से कह रहे हैं कि अपनी सीमाएं खोल दो, मैं इसे पाखंड मानता हूँ। दावुतोग्लू ने कहा कि अलेप्पो में रूस की मदद से सीरियाई सेना के ताजा हमले एक पूरी नस्ल को खत्म करने के बराबर हैं। उन्होंने कहा,
Tabii mültecileri hepimiz kabul edeceğiz. Ama bu saldırıların bir diğer amacı da Suriye'de bir etnik temizlik yapmaktır.
हम सबको शरणार्थियों को स्वीकार करना चाहिए, लेकिन ये हमले सीरिया में एक नस्ल के खात्मे के बराबर हैं। जो लोग सीरियाई सरकार का समर्थन नहीं करते हैं, उन्हें सीरिया से बाहर खदेड़ा जा रहा है। ये एक व्यवस्थित नस्लीय खात्मा है। वहीं तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयब अर्दोगान ने कहा है कि अमरीका कुर्दों का समर्थन कर लहू का समंदर पैदा कर रहा है। इस सब के बीच मानवीय समूहों ने चेतावनी दी है कि अलेप्पो के इर्द गिर्द जारी लड़ाई भयंकर तबाही में बदलती जा रही है। अंतर्राष्ट्रीय रेडक्रॉस के मुताबिक शहर में दो हफ्तों से पानी की आपूर्ति नहीं है, मानवीय मदद पहुंचाने वाले रास्ते कट गए हैं और ईंधन और बिजली की कमी है। स्वास्थ्य सेवाएं देने वाले समूह मेडिसा सा फ्रंटिये का कहना है कि उसके कम से कम 3 अस्पतालों पर हमले हुए हैं। 4.5 साल से जारी सीरियाई गृह युद्ध में अब तक 2.5 लाख से अधिक लोग मारे जा चुके हैं और 1.10 करोड़ से अधिक को अपना घर छोड़ना पड़ा है।
तुर्की ने सीरियाई संकट के लिए संयुक्त राष्ट्र और अमरीका पर आडंबर का आरोप लगाया। रिपोर्ट सुना रहे थे दिलनवाज पाशा।
खबर सच है अगर BBC पर है।
अगली खबर भारत से। सियाचिन ग्लेशियर में हिमस्खलन के बाद बर्फ में दबकर भी जीवित बचे लांस नायक हनुमंथप्पा की दिल्ली के आर्मी हॉस्पिटल में हालत नाजुक बनी हुई है। उनका उपचार कर रहे डॉक्टरों ने मेडिकल बुलेटिन जारी कर कहा है कि हनुमंथप्पा के कई अंगों ने काम करना बंद कर दिया है। दूसरी ओर उनकी सेहत के लिए भारत में कई जगहों पर लोगों ने प्रार्थनाएं की हैं। बेंगलुरु से इमरान कुरैशी की रिपोर्ट।
ये मंदिर की घंटियां बाजे और प्रार्थना की आवाजें भारत के अलग अलग जगहों से इकट्ठा की गई हैं। वाराणसी से लेकर मुंबई, मंगलुरु, मैसूरू, दिल्ली और कर्नाटका के हुबली के बेटसूर ग्राम तक में लांस नायक हनुमंतप्पा कोपड़ की तबीयत जल्द से जल्द अच्छी हो जाए, इसके लिए दुआ मांगी जा रही है। लोगों का यह स्नेह देखकर हनुमंतप्पा के परिवार के लोग अभिभूत हो गए हैं। पहले तो यह सुनकर कि वह सियाचिन के बर्फ में 5 दिनों के बाद भी जिंदा हैं, उनकी खुशी का ठिकाना ना था, और अब इतने सारे लोगों को प्रार्थना करते देख उनकी आंखें भर आई हैं। उनके गांव बेटसूर, जो कर्नाटका के हुबली से करीब 20 किलोमीटर दूरी पर है, वहां क्या हुआ बताते हैं हनुमंतप्पा के रिश्ते के भाई ईश्वर कोप्पड़।
और 14 वर्ष
यहाँ तो हाई स्कूल के छात्रों से लेकर घर घर में प्रार्थना की जा रही है। हनुमंतप्पा एक बहुत ही मीठा बोलने वाले शख्स थे। वह करीब 14 साल पहले फौज में भर्ती हो गए क्योंकि उनका परिवार ज्यादातर खेतों में मजदूरी करते थे। इतने लोग उनके लिए प्रार्थना करते हैं तो हमें उम्मीद है कि वह ठीक हो जाएंगे। ये थे ईश्वर कोप्पड़ के शब्द। केंद्र सरकार हनुमंतप्पा के परिवार को दिल्ली ले गई है जिससे कि वो उनके पास रह सकें। हनुमंतप्पा के भतीजे रमेश कोप्पड़ कहते हैं,
नाव किरणी कर और जन्म काकर बजे इसी तरह एल्डर भर्ती और जीवंतवाई के लिए और आराधना करने का मानता।
हम क्या कहें, हम तो अभिभूत हो गए हैं। यह कहना मुश्किल हो रहा है कि इतने सारे लोग प्रार्थना कर रहे हैं। हाँ, उनकी माँ को भी भरोसा आ गया है कि इतने लोगों की प्रार्थना से वो ठीक हो जाएंगे। ये थे रमेश के शब्द। इस बीच हनुमंतप्पा की हालत गंभीर बनी हुई है। मेडिकल बुलेटिन में बताया गया है कि उनके मस्तिष्क में ऑक्सीजन की कमी हो गई है। जिस तरह हनुमंतप्पा के लिए सारा देश प्रार्थना कर रहा है, वह यही साबित करता है कि जिंदगी बहुत ही अजीब मोड़ ले सकती है कभी कभी। सिर्फ एक नेता या बड़े अफसर के लिए या एक बोरवेल में फंसे हुए बच्चे के लिए ही प्रार्थना नहीं करती है, एक लांस नायक के लिए भी इस देश के दिल में उतनी ही जगह है। बेंगलुरु से इमरान कुरैशी।
उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में कल पुलिस और वकीलों के बीच हुए हिंसक संघर्ष में कई वाहनों में तोड़फोड़ और आगजनी की गई। हिंसा के लिए वकील और प्रशासन एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। उत्तर प्रदेश बार काउंसिल ने घटना की जांच और इसके लिए जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए 15 फरवरी को राज्यव्यापी बंद का आह्वान किया है। लखनऊ से समीरात्मज मिश्र की रिपोर्ट।
उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ का व्यस्ततम इलाका परिवर्तन चौक कल एकाएक रणभूमि जैसा बन गया। हाईकोर्ट के वकीलों और पुलिस के बीच जमकर संघर्ष हुआ। कई वाहन जला दिए गए और कई तोड़ दिए गए। दरअसल वकील लोग अपने एक साथी की मौत को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे और उसके परिवार के लिए मुआवजे की मांग कर रहे थे, लेकिन अचानक ये प्रदर्शन हिंसक हो गया। जिले के आला अफसर कुछ ही देर में वहां पहुंच गए और शांति व्यवस्था कायम करने के लिए बड़ी संख्या में पुलिस कर्मियों को बुलाया गया। लखनऊ के जिलाधिकारी वी राजशेखर भी घटनास्थल पर पहुंचे और उन्होंने घटना की जानकारी दी।
कल मृत्यु हुई थी और उसी के इसको लेके कुछ अधिवक्ताओं ने रोड जाम किया था यहाँ पे परिवर्तन चौराहे के आसपास में। अब उनके जो मांग थी, मांग सुनवाई करके उसको जो है मान भी लिया गया था और सफिशियंट फोर्स भी थी। अब सभी चीज़ें वहाँ पे व्यवस्था सुनिश्चित ढंग से किया गया था। बातचीत होने के बाद ये लोग जो है मान गए, वापस जो है जा रहे थे। वापस जाने के बाद कुछ उपद्रवी लोगों ने जो है शांति व्यवस्था बिगाड़ने की कोशिश किया और उसके बाद जो है सफिशियंट फोर्स मंगा के उसे कंट्रोल किया गया है और शांति।
वहीं वकीलों का आरोप है कि वो शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन पुलिस ने बेवजह लाठीचार्ज शुरू कर दिया। उत्तर प्रदेश बार काउंसिल के चेयरमैन परेश मिश्रा ने बीबीसी को बताया,
पुलिस ने बरवंडा से जो लाठीचार्ज करी है, जो सारी की सारी उन्होंने लिमिट क्रॉस कर दी है, हाईकोर्ट के अंदर घुस करके लाठीचार्ज किया है। देखिए, लाठीचार्ज करना स्टेट गवर्नमेंट के उसमें है, प्रावधान है उस चीज का, अगर मॉब कंट्रोल में नहीं आ रही है, मगर हाईकोर्ट के अंदर घुस करके लाठीचार्ज करेंगे ये कहीं कुछ नहीं है। और ऐसा क्या काम किया था, एक वकील का मर्डर परसों हुआ था, उसको उसका मुआवजे की और उसके क्या कहते हैं सरकारी नौकरी की और जो लोग उसमें मर्डर में इन्वॉल्व हैं उनको अरेस्ट करने की बात करने के लिए गए थे।
परेश मिश्रा का ये भी आरोप था कि पुलिस और प्रशासन ने वकीलों की गाड़ियों को आग लगाई।
कम से कम 40 गाड़ियां फोर व्हीलर का जिनका शीशा तोड़ दिया पीएससी वालों ने, कम से कम 100 टू व्हीलर ऐसे हैं जिनको पूरा हेडलाइट तोड़ दी गई, गद्दियां जला दी गई। वकील गाड़ियां हैं, वकील अपने आप तो अपनी गाड़ी तोड़ेगा नहीं।
बहरहाल चाहे पुलिस वालों ने किया हो या फिर वकीलों ने, लेकिन पूरे इलाके में जगह जगह टूटी और जली गाड़ियां दिखाई दे रही थी। निजी वाहनों के अलावा कई सरकारी वाहनों को भी नुकसान पहुंचाया गया। रोडवेज की बसों को भी इस हिंसक संघर्ष का शिकार होना पड़ा। जिलाधिकारी स्थिति के शांत होने का दावा भले ही कर रहे हैं, लेकिन वकीलों की ओर से शांत होने का कोई संकेत फिलहाल नहीं मिल रहा है, क्योंकि बार काउंसिल 15 फरवरी को घटना के विरोध में राज्य भर में हड़ताल करने की योजना बना रही है। समीरात्मज मिश्र, बीबीसी लखनऊ।
राजधानी दिल्ली स्थित जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में संसद हमले के दोषी अफजल गुरु के मुद्दे पर 2 दिन पहले हुए विवाद के बाद दोनों पक्ष एक दूसरे के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। अफजल गुरु को 9 फरवरी 2013 में फांसी की सजा दी गई थी। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने उन छात्रों को विश्वविद्यालय से निष्कासित करने की मांग की है जिन्होंने 2 दिन पहले जेएनयू में अफजल गुरु के समर्थन में कथित तौर पर नारे लगाए थे। अफजल गुरु से जुड़े कार्यक्रम के विरोध की वजह जानने के लिए हमारी सहयोगी हरिता कांडपाल ने जेएनयू छात्र संघ के संयुक्त सचिव सौरभ कुमार से बात की।
अफजल गुरु की शहादत दिवस मनाया जा रहा था और कश्मीर के अलगाव की बात की जा रही थी। एक्चुअली यह घटना पहली घटना नहीं है, जेएनयू में ऐसे कई सारी घटनाएं पिछले कई सालों से होती आ रही हैं। मैंने जेएनयू के प्रशासन इंक्लूडिंग वीसी रेक्टर प्रॉक्टर चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर से एक लेटर लिखा कि आप ऐसी एंटी नेशनल एक्टिविटीज को बंद करवाए कैंपस में। उन्होंने बोला कि हाँ हम बंद करवाएंगे, लेकिन शाम में वो प्रोटेस्ट किया गया, उनके द्वारा वो जश्न मनाया गया, वो शहादत दिवस मनाया गया और एक लंबा उन्होंने मार्च निकाला है। हम लोगों ने पुलिस प्रशासन को भी कॉल किया, लेकिन पुलिस प्रशासन और जो जेएनयू प्रशासन दोनों ने चुप्पी बांध के वहां पे अपना पूरा जिस तरीके से प्रोटेस्ट रहा वो लोग देखते रहे। हम लोगों ने इसका पुरजोर कोशिश किया है कि इस प्रोटेस्ट को रोका जाए, लेकिन हम लोग रोकने में समर्थ नहीं रहे।
कुछ कार्रवाई के बारे में आपको बताया गया?
पुलिस बोली है जांच करेंगे, लेकिन अभी तक कुछ भी उधर से रिस्पांस नहीं आया कि कोई एक्शन लिया गया हो या कुछ भी हो। जेएनयू प्रशासन से भी अभी कुछ तक इसमें बोला नहीं जा रहा है। प्रशासन बस यही बोल रही है हम कार्रवाई करेंगे, लेकिन अभी तक लोग चुप्पी बांध के बैठे हुए हैं।
जी, तो अब आपकी क्या मांगे हैं यूनिवर्सिटी प्रशासन से?
जिस बैनर तले 10 स्टूडेंट का नाम जिसमें था उनको तुरंत इमीडिएट एक्शन लिया जाए और स्टिकेट किया जाए। उसके साथ साथ जो हमारे पास कल वीडियो थी उस वीडियो क्लिपिंग को हम लोगों ने जिला प्रशासन को दे दिया है। एंटी नेशनल जो लोगों ने नारा लगाया, जो कश्मीर के अलग होने की बात के नारा लगाया, आप तुरंत इमीडिएट एक्शन लीजिए। अगर आप नहीं लेते हैं तो हम दिल्ली के सड़कों पर उतरेंगे।
ये थे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़े नेता सौरभ कुमार। वहीं अफजल गुरु के समर्थन में कार्यक्रम आयोजित करने वाले जेएनयू के छात्रों का कहना है कि सरकार विश्वविद्यालय के विरोध की आवाज़ को दबाना चाहती है। इन छात्रों ने कार्यक्रम की अनुमति देने और फिर उसे रद्द किए जाने की तुलना हैदराबाद यूनिवर्सिटी के छात्र रोहित वेमुला की आत्महत्या के पहले के घटनाक्रम से की है। हमारी सहयोगी हरिता कांडपाल ने कार्यक्रम आयोजित करने वाले छात्रों में शामिल उमर खालिद से बात की और उनका पक्ष जानना चाहा।
चर्चा को आगे बढ़ाया कि कश्मीरी जनता को यह अधिकार होना चाहिए कि वो अपना फ्यूचर खुद तय करें और ये अधिकार किसी भी तरीके से उनसे छीना नहीं जा सकता। यूनाइटेड नेशंस काउंसिल के रेजोल्यूशंस भी हैं, 60-70 सालों से कश्मीर की जनता को ये अधिकार को डिनाई किया जा रहा है।
आप लोगों पर उंगलियां उठ रही हैं, आपने और आपके साथियों ने इस कार्यक्रम में भारत विरोधी नारे लगाए हैं।
बात है किसी को हमसे डिफरेंस हो सकता है, किसी को इस बात से जो हम पक्ष रख रहे हैं उसका एक डिफरेंट ओपिनियन हो सकता है। जेएनयू में अराउंड 10-12 संगठन हैं जिनका हर सवाल पे अलग अलग ओपिनियन है, बट द पॉइंट इज कि हमारे पास ये अधिकार भी नहीं है अपना ओपिनियन रखें। एज एन ऑर्गेनाइजर मतलब वो जितने स्लोगन आप वीडियो में देख रहे हैं वो हमने नहीं लगाया, वो कश्मीरी स्टूडेंट से वो लोग स्लोगन लगा रहे हैं।
ये भी बताई जा रही है कि यूनिवर्सिटी प्रशासन ने कार्यक्रम की परमिशन वापस ले ली थी और तब भी आप लोगों ने इस कार्यक्रम को जारी रखा।
हमारा यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट्स मूवमेंट हमेशा सेंसरशिप के खिलाफ रहा है। इस यूनिवर्सिटी ने इसी प्रोग्राम के लिए परमिशन दिया, उसके बाद एंथ आर पे प्रोग्राम का परमिशन कैंसिल किया। बीच में एबीपी कुछ लोगों ने जाकर उनसे बात किया, एक चिट्ठी जेएनयू से जॉइंट सेक्रेटरी जो एबीपी से हैं उन्होंने चिट्ठी दी वाइस चांसलर को, जाकर रजिस्ट्रार से बात किया, रेक्टर से बात किया, और इस सब के बीच में प्रशासन ने ये काम अंजाम दिया कि हमारा परमिशन कैंसिल हुआ। वो 5 मिनट पहले हमको वर्बली कम्युनिकेट करते हैं विदाउट इवन टेलिंग अस द रीजन। सिमिलर सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स आपको यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद में दिखेंगे, वहां जाकर यूनिवर्सिटी प्रशासन को कुछ बोलते हैं, बीजेपी के एमपी को कुछ बोलते हैं, और पूरा पूरा स्टेट मशीनरी यूनिवर्सिटी अथॉरिटीज का मशीनरी वो सारे यूज होता है उन स्टूडेंट्स के खिलाफ जो कुछ प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। वहां यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद में रोहित वेमुला और उसके साथियों में याकूब मेमन पर सवाल किया था, मुजफ्फरनगर बाकी है की बात की थी, यहाँ हम लोग अफजल गुरु और कश्मीर की बात कर रहे थे। मतलब आज ऐसा लगा है कि बात रखने का भी अधिकार आपसे छीना जा रहा है। मतलब अगर ये यूनिवर्सिटी डिसेंट को अलाउ नहीं करे तो विश्वविद्यालय नहीं वो एक जेल बन जाता है, और आज यही साजिश है सरकार की कि हमारे सारे विश्वविद्यालयों को जेल बना दिया।
वहीं विश्वविद्यालय प्रशासन इस पूरे मामले की जाँच की बात कर रहा है।
We have a proctorial committee which will look into all this information and then take a view on this.
जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर जगदीश कुमार कह रहे थे कि हमने एक समिति का गठन किया है जो पूरे मामले की जांच करेगी। जो भी कार्रवाई की जाएगी वो सबूतों के आधार पर की जाएगी। इस समिति में कई प्रोफेसर शामिल हैं। जांच कब तक होगी इसका समय नहीं बताया जा सकता। ये थे जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर जगदीश कुमार के शब्द।
सनसनी नहीं, विश्वसनीयता का दम,
बीबीसी हिंदी।
आज है गुरुवार और तारीख 11 फरवरी। बीबीसी हिंदी से दिन की पहली सभा नमस्कार भारत सुन रहे हैं आप संदीप सोनी के साथ। कार्यक्रम में आगे है झारखंड की उस लड़की की कहानी जिसने कम उम्र में शादी के खिलाफ आवाज उठाई। खेल की खबरें भी आप सुनेंगे, लेकिन पहले जानते हैं दिल्ली से छपने वाले अखबार आज क्या कह रहे हैं। दिलनवाज पाशा
जी। संदीप, आज के अखबारों में भी सियाचिन में 6 दिन तक बर्फ में के नीचे दबे रहने के बाद जीवित मिले जवान हनुमन थप्पा से जुड़ी खबरें हैं। नई दुनिया लिखता है, जांबाज लांस नायक हनुमन थप्पा को बचा लो, किडनी ले लो, एक महिला ने ये पेशकश की है। वहीं हनुमन थप्पा की हालत नाजुक हो गई है और इस खबर को भी कई अखबारों ने सुर्खी बनाया है। जिक्र करेंगे दैनिक जागरण का। दैनिक जागरण ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का साक्षात्कार किया है। अरविंद केजरीवाल कहते हैं यदि एसीबी मिल जाए तो शीला को भेज दूंगा जेल। उन पर ये सवाल उठते रहे थे कि मुख्यमंत्री बनने के बाद से उन्होंने कांग्रेस की पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित पर नरम रुख रखा है, लेकिन अब उन्होंने कहा है कि मुझे एसीबी दे दो, शीला को जेल में ले लो। अखबारों ने तस्वीर प्रकाशित की है पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में उत्पात मचाने वाले एक हाथी की। मैं तस्वीर में देख रहा हूँ हाथी ने कई मोटरसाइकिलों को गिरा दिया है और मॉल में भीड़ हुजूम जो है दीवारों पर ऊपर चढ़ के उसको देख रहा है। ये तस्वीर कई अखबारों में है। एक और तस्वीर का जिक्र करेंगे जो नव भारत टाइम्स में पहले पन्ने पर प्रकाशित है। भारत के राष्ट्रपति भवन में जो मुगल गार्डन है वो कल से खुल जाएगा। ट्यूलिप के फूलों की बहुत खूबसूरत तस्वीर अखबार ने प्रकाशित की है। द इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक मुजफ्फरनगर दंगों में एक गैंगरेप के मामले में 4 लोगों को निर्दोष बरी कर दिया गया है। ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि पीड़िता और उसके परिवार ने गवाही तोड़ दी है। अखबार पीड़िता के पति के हवाले से लिखता है कि मामला दर्ज करवाने के बाद से उन पर उन्हें धमकियां दी जा रही थी और उन पर कई तरह के दबाव थे। ये एक खबर टेरी से जुड़ी हुई है, पर्यावरण के लिए काम करने वाला बड़ा संस्थान है दुनिया का, पचोरी जो उसके निदेशक हैं पहले भी खबरों में रहे, उन पर यौन उत्पीड़न का एक और ताज़ा मामला लगा है और ये खबर लगभग सभी अखबारों के पहले पन्ने पर है। एक आखिरी खबर का जिक्र करेंगे, दैनिक भास्कर ने शीर्षक बनाया है फेसबुक के बोर्ड मेंबर की उस ट्वीट को जिसमें उन्होंने कहा था भारत न्यूट्रलिटी पर भारत का फैसला गलत है और ये देश ब्रिटिश शासन के अधीन होता तो अच्छा होता।
बहुत शुक्रिया। और अगली खबर दरअसल एक कहानी है झारखंड के गुमला के सुदूर गांव की, जहां 10वीं कक्षा में पहुंचने का सपना देख रही ममता कुमारी ने बाल विवाह के खिलाफ आवाज़ उठाई, पुलिस की मदद ली और बारात को लौटा दिया और अब वो अपनी बेहतर जिंदगी का रास्ता पढ़ाई लिखाई में तलाश कर रही हैं। रांची से नीरज सिन्हा की रिपोर्ट।
ममता ने बताया है कि छोटी उम्र में शादी के सवाल पर टोका जरूर था, पर लगा माँ बाबा आर्थिक अभावों से गुजरते हैं, शायद इसलिए ब्याह कर रहे हैं। पहले वो SS हाई स्कूल घाघरा में पढ़ती थी। 27 जनवरी को स्कूल में विधिक जागरूकता शिविर लगा था, इससे प्रभावित होकर उन्होंने शादी रोकने के आवेदन दिए। यह आवेदन जिला पहुंचा, फिर पुलिस के पास।
विधिक जागरूकता के लोग आए थे, वो लोग बताए कि बाल विवाह नहीं करना चाहिए, 18 साल से कम उम्र में शादी नहीं करना चाहिए, अगर शादी करेंगे तो केस हो जाएगा। तो फिर हम मेरे मन में यह जागरूकता आया कि बाल विवाह नहीं करना चाहिए और हमको पढ़ना है।
अब वो पढ़ लिख कर एक शिक्षक बनना चाहती हैं।
मेरे मन में तो है कि हम टीचर बनना चाहते हैं। फिर मम्मी पापा को बोले कि शादी नहीं करना चाहते हैं, तो वो लोग बोले कि अभी ये बच्ची है इसीलिए नहीं करना ही नहीं चाहेगी, ऐसा ही बोलेगी, ऐसा कह के फिर शादी ठीक कर दिए, वहाँ वो लोग पढ़ाएंगे तेरे ससुराल में, ऐसा कह के बोले।
ममता का जिस कस्तूरबा आवासीय स्कूल में प्रशासन ने दाखिला कराया है वह उनके गाँव से करीब 50 किलोमीटर दूर है। हफ्ते भर के दौरान वे कई दौर से गुजरी हैं। अब वह दूसरी लड़कियों से घुल मिल रही हैं। नवीं कक्षा में पढ़ने वाली पल्लवी बताती हैं,
ममता आई इसके बाद हम लोग ताली बजा के इसका स्वागत किए।
स्कूल की एक छात्रा पूजा का कहना है,
हम गांव में पढ़े लिखे नहीं रहते हैं, गांव में बहुत कम पढ़े लिखे हैं और वो लोग भी बहुत कम उम्र में शादी किए हैं, वो लोग भी बाल विवाह किए हैं, इसलिए वो लोग वही चाहते थे कि छोटी उम्र में भी शादी कर दे, जब मेरे सिर का बोझा उतर जाए।
हम हापामुनि गांव भी गए जहां ममता के माता पिता और ग्रामीणों से बातें की। उनका दो कमरे का टूटा फूटा कच्चा मकान है। ममता की माँ सालो देवी बताती है,
देंगे कह के सब कुछ ऋण कर्जा लेके सबसे धारे थे पैसा और खसी भी लिए, और अब तो मेरा बेटिया जे सरकार कर व्यवस्था से हो अपना पढ़े लिखे बढ़िया से है।
पिता रतन साहू के चेहरे पर मायूसी साफ झलक रही थी, पर वे इसे जाहिर होने नहीं देना चाहते।
एकाक एक जानकारी हम लोग को मिली, शादी से पहले हम लोग को पता भी नहीं था, पूरा परिवार हम लोग सब खुश है ममता से।
एन मौके पर शादी रोक दिए जाने से क्या माहौल रहा, इस बारे में ममता के चाचा कृष्णा साहू बताते हैं,
नहीं वो ऐसा नाराज नहीं है, नाराजगी तो थोड़ा बहुत दिखा रहे थे, फिर बाद में पता चला उसको हकीकत क्या चीज है, सही जानकारी मिल गई, उसके बाद वो लोग अपना निश्चित हो गए, बोले कि बस हम लोग भी अब अगला जगह शादी करेंगे, अब ये शादी हम लोग नहीं करेंगे। जो था बना हुआ था, तैयार था, हम लोग सोचे कि बर्बाद हो जाएगा ये इतना खाना पीना, इसलिए हम लोग बोले कि आइए आए हैं यहाँ, खा पी के इत्मीनान से निकल जाइए, फिर सबको खिला पिला के हम लोग विदा कर दिए।
सामाजिक कार्यकर्ता बिंदेश्वर साहू का कहना है,
जान अनजान से हम लोग शादी करने के लिए तैयार थे, लेकिन जब ममता अपना ताकत और बहादुरी को समझा तो हम लोग पूरा गाँव और पूरा समाज हम लोग इससे बहुत खुश है कि हम लोग का होनहार बच्ची है, ये बच्ची हम लोग के कहीं पर आगे बढ़े और अच्छा अपना पैर में खड़ा होए और दूसरों को ही शिक्षा दे कि 18 साल से कम उम्र नाबालिग बच्ची को समाज में शादी ना होए।
ममता के जेहन में एक फिक्र भी है, लिहाजा उनकी नजरें सरकार की घोषणा पर टिकी है। वो कहती है,
सरकार ने घोषणा की है कि मुझे 1,00,000 रुपए मिले, अगर वो पैसा मिल जाए तो मैं मेरे पापा जो कर्ज लिए है उसको तोड़वाऊंगी और कुछ पैसा बचेंगे उससे मैं आगे के लिए भी रखूंगी और मेरे भाई बहन है।
इस फैसले से उनके माता पिता को तकलीफ हुई होगी, इस सवाल पर ममता कहती हैं,
पता नहीं था तो उनको लगा होगा तकलीफ, पर तकलीफ लगा पर हम अपना जिंदगी सुधार लें।
झारखंड के सुदूर गांवों और जनजातीय इलाके की लड़कियों के ख्याल तेजी से बदल रहे हैं। वे पढ़ना चाहती हैं, आगे बढ़ना चाहती हैं। जरूरत है सरकार और सामाजिक स्तर पर उनके मनोबल बढ़ाने की। नीरज सिन्हा, बीबीसी रांची।
और बात अब उन खबरों की जिन पर रहेगी आज हमारी नजर।
उत्तर प्रदेश सरकार आज विधानसभा में आगामी वित्त वर्ष के लिए बजट पेश कर सकती है। सीरिया के लिए अंतर्राष्ट्रीय मदद समूह आज शांतिवार्ता को फिर से शुरू करने और सीरियाई सेना की घेराबंदी में फंसे अलेप्पो शहर तक मानवीय मदद की पहुंच मुहैया कराने के उद्देश्य से मुलाकात करेगा। अमरीकी विदेश मंत्री जॉन केरी और रूसी विदेश मंत्री सरगेई लावरोव के वार्ता में शामिल होने की उम्मीद है। प्रवासी संकट और सीरियाई युद्ध में रूस से पेश खतरे से निपटने में तुर्की की मदद के मुद्दे पर नेटो रक्षा मंत्रियों की बैठक का आज दूसरा और अंतिम दिन है। विज्ञान जगत के लिए आज का दिन अहम साबित हो सकता है। अमेरिका में वैज्ञानिक गुरुत्वाकर्षण लहरों का पता लगाने की दिशा में किए जा रहे प्रयासों के बारे में पत्रकारों को जानकारी देंगे। वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन ने इसके बारे में भविष्यवाणी की थी। और बांग्लादेश में खेले जा रहे अंडर 19 T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में आज बांग्लादेश का मुकाबला वेस्ट इंडीज से होगा।
और अब खेल की खबरें।
खेल समाचारों के साथ मैं हूं रजत चान्ना। कार्यक्रम की शुरुआत क्रिकेट से। बांग्लादेश में चल रहे अंडर 19 विश्व कप के दूसरे सेमीफाइनल में वेस्टइंडीज का मुकाबला होगा आज बांग्लादेश से। वेस्टइंडीज की टीम अपने तेज गेंदबाजों पर निर्भर होगी, पर बांग्लादेश के कप्तान मेहदी हसन मिराज ने विश्वास दिलाया कि उनके बल्लेबाज नेपाल के खिलाफ मिली जीत के बाद वेस्टइंडीज के साथ भिड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार है। भारत के पूर्व खिलाड़ी निखिल चोपड़ा का मानना है कि आज के मैच में बांग्लादेश होगा जीत का प्रबल दावेदार।
देखिए, घर में खेल रहे हैं तो इसमें कोई दोराय नहीं है कि बांग्लादेश की टीम फेवरेट रहेगी। जिस तरीके से विकेट्स होंगी और धीमी गति के गेंदबाज है।
वहीं पहले T20 मैच में श्रीलंका से मिली हार के बाद धोनी के धुरंधर पहुंच गए हैं रांची, जहां भारत 3 मैचों की श्रृंखला में 1-0 से पिछड़ने के बाद मैच में वापसी करने की पूरी कोशिश करेगा। 12 फरवरी को होने वाले इस मैच में पूर्व भारतीय खिलाड़ी निखिल चोपड़ा का मानना है कि भारत को अगर ये मैच जीतना है तो बल्लेबाजों को अच्छी पार्टनरशिप्स करनी होगी।
एक शुरुआत में पार्टनरशिप होती है तो कहीं ना कहीं वही दबाव जो है वो गेंदबाज के ऊपर हो जाता है, और आपके मध्यक्रम के बल्लेबाज हैं, एक अच्छी शुरुआत के बाद एक उनको एक प्लेटफॉर्म मिल जाता है अपने शॉट्स खेलने के लिए। पार्टनरशिप करनी बहुत जरूरी है और साथ में विकेट का अनुमान लगाना होगा।
वही गुवाहाटी में चल रहे दक्षिण एशियाई खेलों में भारतीय महिला हॉकी टीम आज फाइनल में श्रीलंका से भिड़ेगी। भारतीय टीम ने लीग मुकाबलों में नेपाल को 24-0 से हराया था, जबकि पहले मैच में श्रीलंका को 12-1 से मात दी थी। पूर्व ओलंपियन हरबिंदर सिंह का मानना है कि आक्रामक हॉकी खेलनी होगी भारत को।
ज्यादा से ज्यादा गोल करें, और मैं कह रहा हूं कि उनको कोई दिक्कत नहीं आएगी, और मेरे ख्याल जीतते हैं तो एक मनोबल जरूर बढ़ेगा।
भारतीय महिला हॉकी टीम ने 36 साल के बाद ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया है।
और कार्यक्रम के समापन से पहले विश्व समाचार एक बार फिर दिलनवाज पाशा से।
बीबीसी समाचार। मानवीय समूहों ने चेतावनी दी है कि सीरिया के उत्तरी शहर अलेप्पो के इर्द गिर्द जारी लड़ाई भीषण तबाही में बदलती जा रही है। तुर्की ने उत्तरी सीरिया में जारी युद्ध संकट पर संयुक्त राष्ट्र और अमरीका की प्रतिक्रिया की तीखी आलोचना की है। अमरीकी सीनेट ने उत्तर कोरिया पर कड़े प्रतिबंधों के मसौदों को मंजूरी दे दी है। अमरीकी न्याय विभाग फर्ग्यूशन शहर की पुलिस व्यवस्था में सुधार लाने के लिए शहर के खिलाफ संघीय मुकदमा शुरू करेगा। उत्तरी नाइजीरिया के अधिकारियों के मुताबिक बोर्नो प्रांत में प्रवासियों के लिए बनाए गए एक कैंप पर हुए आत्मघाती हमले में कम से कम 52 लोग मारे गए हैं। ब्राजील के रोमन कैथोलिक चर्च ने जीका वायरस प्रभावित महिलाओं के गर्भपात की संयुक्त राष्ट्र समर्थित मांग को ठुकरा दिया है। जीका वायरस से गर्भ में पल रहे बच्चों के दिमाग पर असर होता है। खाद्य और पेय पदार्थ बनाने वाली अंतर्राष्ट्रीय कंपनी नेस्ले ने एथलेटिक्स की नियामक संस्था IAAF के साथ अपनी साझेदारी खत्म कर दी है। बीबीसी समाचार।
नमस्कार, भारत में इतना ही। कार्यक्रम को आप तक पहुंचाने में हमारी मदद कर रहे थे राजेश चौहान। विश्व भारती में ठीक एक घंटे के बाद 8 बजे आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक संदीप सोनी के साथ पूरी टीम को दीजिए इजाज़त।